खुदावंद जो रहीम है उसके पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इस हवाले को पढ़ने का मकसद ये है कि हम पिछले दिनों से अब्दियत में यानी कि खुदा की हजूरी में जो ईमानदारों को अजर मिलेगा उसके बारे में सीख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम भूल जाएं इस नए साल के दूसरा जो दिन शुरू हुआ है इसमें हम उन अजरों को ज़रा दोहराई करें कि वो कौन से अजर हैं, वो कौन सा बदला, कौन सा सिला है, ताकि हम दानियल 12वें बाप में उस दर्जे को देखें कि ईमानदारों को मुख्तलिफ दर्जे मिलेंगे, मुख्तलिफ मकाम खुदा की हजूरी में मिलेंगे। जैसे दुनिया में सदर है, वजीर है और उसके मशीर हैं और फिर मिनिस्टर है, वैसे ही आसमानी माहौल में भी ईमानदारों को मुख्तलिफ दर्जे मिलेंगे। जैसे रसूलों के लिए 12 तख्त हैं, 12 तख्तों पर रसूलों को क्या मिलेगी, बैठने की इख्तियार और हुकूमत करने की ये दर्जा, ये इजाज़त मिलेगी। और फिर उसके बाद उस हुकूमत में बहुत से दूसरे ओहदे हैं, शहरों पर, मुल्कों पर, रियासतों पर, ईमानदारों पर और फिर क्या कह सकते हैं कि फरिश्तों पर, उन गराए हुए फरिश्तों पर हमें अदालत करने का मौका मिलेगा। लेकिन उन्हीं को जो कोई मसीही जिंदगी को उस तौर से गुजारेगा जिस तौर से खुदावंद खुदा चाहता है, यानी कि गालबाना जिंदगी, वफादारी की जिंदगी, उसमें कायम रहने की जिंदगी। सो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालें याद दहानी के तौर पर पहला करंथी उसका 9 बाब। हम वापस इसी हवाले पर आएंगे। आज मैं चाहता हूं कि हम दुहाई के तौर पर उन तमाम ताजों को देखें जो ताज बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों के लिए हैं। पहला करंथियों 9 बाब, जब हम उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़ते हैं तो पालूस रसूल दो दुनियावी मिसालें देता है, दौड़ने वाले की, 9 बाब उसकी 24वीं आयत से, दौड़ने वाले की मिसाल देता है कि वो दौड़ को जीतने के लिए कितनी मेहनत करता है। और फिर दूसरी वो मिसाल देता है उस पहलवान की कि दुनियावी तौर पर वो पहलवान हर तरह का परहेज, दाव पेच सीखता है ताकि वो अपने मुकाबला करने वाले पर क्या आए, गालब आए। तो पालूस रसूल ये दुनियावी मिसाल देता है कि पहलवान और दौड़ में दौड़ने वाले इतनी मेहनत सब कुछ करते हैं, हर तरह का परहेज करते हैं, ये सब इसलिए करते हैं ताकि उस सेहरे को, उस इनाम को जीतें। लेकिन वहां पर पालूस रसूल क्या कहता है, 24वीं आयत में, दौड़ते तो सभी हैं, इनाम एक ही ले जाता है। 25वीं आयत में क्या कहता है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है, वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं। ये जिंदगी, जिंदगी की जितनी भी कामयाबियां हैं जो इंसान दुनियावी जिंदगी गुजारता है, उसकी तमाम दुनियावी कामयाबियां और उसके सेहरे क्या हैं, मुरझाने वाले हैं। लेकिन पालूस रसूल क्या कहता है, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। पहला चेहरा कौन सा है जिसे सेहरा भी ताज भी कहा गया है, हम किस सेहरे के लिए करते हैं जो मुरझाएगा नहीं, जिसे अबदी कहा गया है, ये कौन सा ताज है, अबदी ताज, ना मुरझाने वाला सेहरा। दुनिया के लोगों को इनाम मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो उससे हमेशा तक अपने पास नहीं रखेंगे। अगर इस साल कोई दौड़ में फर्स्ट आया है पाकिस्तानी दौड़ में, तो अगले साल कोई और फर्स्ट आएगा और उनका नाम बदलता रहेगा। लेकिन आसमानी शहर में ईमानदारों को जब हम जीतेंगे तो हमें वो चेहरा मिलेगा जो मुरझाने वाला नहीं है। ये पहला सेहरा है। कौन सा पहला सेहरा है, ना मुरझाने वाला सेहरा, कौन सा, ना मुरझाने वाला सेहरा जो मुरझाता नहीं। तो ये ईमानदारों के लिए अजर है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, फिलिपियों, फिलिपियों 4 बाब, फिलिपियों 4 बाब में ये वो सेहरा है जो गवाही में वफादार रहने पर ईमानदारों को मिलेगा, यानी कि जो कोई गवाही देगा और मसीह की मनादी करेगा, मनादी करने वालों को, गवाही देने वालों को कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ये काम किए हैं, जैसे उस बदरू गिरफ्तार लोगों ने जाकर कहा, जैसे 10 कोढ़ियों को शिफाई हुई और 9 ने आकर गवाही नहीं दी, एक ने गवाही दी कि हाँ मैं कोढ़ से शिफा पा गया हूँ। मसीह की गवाही में वफादार रहने का अजर क्या है? शादमानी का ताज। कौन सा ताज? शादमानी का ताज। फिलिपियों 4 बाब, वहां पर लिखा है उसकी पहली आयत में, इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं जो मेरी खुशी और ताज हो। इसे शादमानी का ताज कहा गया है। खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में ईमानदारों को ये ताज मिलेगा जिसे शादमानी का ताज कहा गया है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा मोहताज हूं क्योंकि मेरी खुशी और मेरा ताज हो। जिनको पालूस रसूल ने बैंत खाकर, कोड़े खाकर, गालियां खाकर, सिंगसार होकर, भूख और नंगेपन की हालत में फिलिपी की शहर में जाकर जीता, उन रूहों को उसने गवाही दी और उन रूहों का अजर किसको मिलेगा? पालूस रसूल को। अगर आज आप दुनिया में किसी रूह को जीतते हैं यीशु मसीह के लिए, तो आपका अजर क्या है? आसमान पर है। जब यीशु मसीह अपने तख्त पर बैठेगा तो यीशु मसीह कहेगा, जमील किसके वसीला से? नसरीन के वसीला से, क्योंकि क्यों उसके घर में काम करती थी और उसकी जिंदगी बदल गई। सदाकत लतीफ के वसीला से, क्यों उसके उसका साथ काम करता था और वहां पर उसने यीशु मसीह में अपनी गवाही दी कि मेरा यीशु जिंदा है। तो यीशु मसीह जब किताब हयात खोलेगा तो किताब हयात के साथ बहुत सी किताबें खोली जाएंगी और उस किताबों में ईमानदारों को क्या मिलेगा? अजर मिलेगा। ये कौन सा है? शादमानी का ताज। कौन सा ताज है? शादमानी का। पहला कौन सा ताज था? ना मुरझाने वाला सेहरा। दूसरा शादमानी का ताज, ये गवाही देने पर ईमानदारों को मिलेगा। मेरे साथ देखें तीसरा ताज, तमोथियस, दूसरा तमोथियस 4 बाप, दूसरा तमोथियस 4 बाप उसकी 7 और 8 आयत, जिसे इसे रास्तबाजी का ताज कहते हैं। ये ताज खुदावंद की वफादारी में रहने का, खुदावंद में वफादार रहने का सिला है। दूसरा तमोथियस 4 बाप उसकी जब हम 7 आयत को पढ़ते हैं, तो पालूस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। मैं ईमान में, वो कहता है, महफूज रखा, ईमान को महफूज रखा, ईमान में कायम रहा। तो ये ताज खुदावन की वफादारी में कायम रहने के बायस ईमानदारों को मिलेगा। और वो अजर क्या है? आगे देखें, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रासबाजी का वो ताज रखा हुआ है। कौन सा ताज? रासबाजी का ताज। तीसरा ताज कौन सा है? रासबाजी का ताज। रासबाजी का ताज ईमानदारों को मिलेगा जब वो वफादार रहेंगे। पालूस वफादार रहा, क्या कहता है? मैंने कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया और मैंने ईमान में क्या रखा? अपने आप को कायम रखा। अब जब ईमानदार अपने आप को कायम रखेंगे मसीह में, तो हमारा अजर क्या होगा? रासबाजी का ताज। कौन सा ताज? रासबाजी का। ये कौन सा ताज? कितना कितना कितने ताज हो गए? ना मुरझाने वाला सेहरा 1, शादमानी का ताज 2, और फिर रासबाजी का ताज 3। ये ईमानदारों को, जैसे पालूस वफादार रहा, उसे मिलेगा क्योंकि वो कहता है कि मेरे वास्ते आइंदा के लिए ये ताज रखा हुआ है, रासबाजी का ताज। मेरे साथ चौथा ताज देखें, ये ताज पासबानों के लिए, डीकनों के लिए, एल्डरों के लिए, ईमानदारों के लिए भी हो सकता है। ये ताज है खिदमत में वफादार रहने का अजर। मेरे साथ देखें दूसरा, पहला पत्रस 5 बाब, पहला पत्रस उसका 5 बाब उसकी 4 आयत को देखेंगे। ये चौथा ताज है जो खुदा के खादमों को, जिनको पासबान की खिदमत मिली है, मबशरों को, या जो भी खुदा के कलाम की खिदमत करता है, खासल खास गल्लाबान, तो ये ताज अजर के तौर पर ये सेहरा मिलेगा। पहला पत्रस 5 बाब उसकी 4 आयत। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा, ये यीशु मसीह का वो दिन है जब वो आएगा, जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा, जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ये जलाली ताज होगा। कौन सा ताज? जलाली ताज। जलाल का सेहरा, इसकी रोशनी, इसका जाहो जलाल अजीब होगा, इसकी अजमत, इसकी इज्जत अजीब होगी। सो ये उन लोगों के लिए है जो वफादारी से खुदा की खिदमत करते हैं। पुराने नामा में बहुत से काहिन थे जिन्होंने वफादारी से खिदमत ना की। वो उन फकीयों फरीसियों की मानत थी। आप सबको याद है कि यीशु मसीह ने कहा कि किसकी 99 भेड़ें थी और 99 भेड़ों में से, 100 भेड़ों में से 99 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई, और वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है, और जब जाता है तो वापस आकर उसी भेड़ों में से एक को लेकर हलाक करता है और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई। सो फकीयों और फरीसियों का ये हाल था कि वो किसी एक को जीतने के लिए बहुत सी कुर्बानी दे देते थे, वो पूरे दिल से खुदावन की खिदमत नहीं करते थे। हिजकील की 34वें बाब को आप पढ़ सकते हैं, वहां पर चरवाहों का हाल बयान किया गया है। मलाकी की किताब में देख सकते हैं कि काहिनों की बेवफाई को बयान किया गया है कि वो मुंह से मेरी ताजीम करते हैं, उनके दिल मुझसे दूर हैं। वो फकीयों और फरीसियों का हाल यीशु मसीह ने इसीलिए बयान किया था, तुम सफेद चूना फिरी हुई कब्रें हो। तुम ऊपर से सफेद और खूबसूरत नजर आते हो, अंदर क्या है? मुर्दों की हड्डियां। और उनकी किस तरफ इशारा किया गया है? बेवफाई पर। सो जलाल का सेहरा किनको मिलेगा? जो खिदमत में कायम रहेंगे। मेरे लिए, आपके लिए, आपके लिए भी हो सकता है। एफसस की कलीसिया जब शुरू हुई तो वहां पर एक खानदान ने, जो किरमस बेचते थे, उससे रंग बनाया जाता था। आज तो बहुत दूसरी चीजें बन गई हैं। उस दौर में किरमस का कीड़ा होता था, उस कीड़े को मारकर रंग बनाया जाता था, और वो खानदान ये काम करता था, और उनके वसीला से कलीसिया का एक गिरोह शुरू हुआ। वे पलूस रसूल से उन्होंने खुदा का कलाम सुना और उन्होंने खिदमत की। हो सकता है उनके लिए खुदा खुदा का ये अजर है कि वो खिदमत में वफादार रहे। हम भी खिदमत कर सकते हैं, कलाम सुनाने की नहीं, चर्च में सफाई कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, बहन भाई बीमार है उसकी मदद कर सकते हैं, और बहुत से काम हो सकते हैं। अगर कलीसिया में कोई बहन बेटा बेटी को जन्म देने वाली है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसकी तमादारी कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। तो खिदमत का लफ्ज़ है, जैसे आज कल हमारे जो होटलों में इस्तेमाल होता है, जिसे वेटर कहते हैं। वेटर का जो यूनानी लफ्ज़ निकलता है, उसे कहते हैं डिकनास, यानी डीकन की खिदमत, टेबल पर खिदमत करने वाला। क्या लिखा गया है कि जब सरदार गलाबान जाहिर होगा, कौन? यीशु मसीह। तो जलाल का सेहरा, ऐसा सेहरा जो मुरझाने वाला नहीं, वो ईमानदारों को, खासकर खादमों को मिलेगा, अगर वफादारी से खिदमत करेंगे। वरना बहुत से वाकयात हैं पुराने अहदनामा में, खुदा के खादमों के, उनकी बेपरवाही के, कि उनको कोई अजर नहीं मिलेगा। सो ये था चौथा अजर। पहला अजर कौन सा था? ना मुरझाने वाला सेहरा। दूसरा अजर कौन था? शादमानी का सेहरा। तीसरा अजर रासबाजी का ताज। और चौथा सेहरा जलाल का सेहरा। चौथा सेहरा जलाल का सेहरा। मेरे साथ पांचवा ताज देखें। यकूब उसका पहला बाप, यकूब उसका पहला बाप, उसकी 12वीं आयत। ये ताज आजमाइशों में, बेइज्जतियों में, खासकर आजमाइशों में वफादार रहने पर मिलेगा, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है जिंदगी का ताज। मकाशवा की किताब उसका 2:10 क्या कहता है? यही बात कहता है। दो जगह पर जिक्र मिलता है, यकूब पहला बाप उसकी 12 आयत। यहां पर क्या लिखा है? मबारिक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, मकबूल यानी के काबल ठहरा, इस लायक ठहरा, तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। इन सारे ताजों के पीछे खुदा का वादा है, खुदा का वादा है। तो ये चौथा ताज। पांचवा ताज कौन सा है? जिंदगी का ताज। यकूब पहला बाप उसकी 12 आयत। कौन सा ताज? जिंदगी का ताज। ये भी खुदावंद की हजूरी में, जब खुदावंद के पास हम खड़े होंगे, फरिश्तगान की बड़ी भीड़, आसमानी और जमीनी लश्कर आएंगे, जैसे अब्रानियों 13 बाप में, गालबन 12 बाप में ये लिखा है। वहां पर खुदावंद के सहून और फरिश्तगान और आसमानी गरोह और सब पेलोठों की जमात और आसमानी कलीसिया खड़े होंगे, और वहां पर क्या होगा? आसमानी लोगों को खुदा की हजूरी में अजर मिलेगा। कह सकते हैं कि परेड होगी, जैसे फौजी परेड होती है वैसे आसमानी परेड होगी। उसमें फरिश्तों, अरबों करोड़ों फरिश्तगान, अरबों करोड़ों ईमानदार होंगे, और वहां पर उनको ये अजर मिलेगा तमगे के तौर पर। तो कितने अजर हैं? 5 अजर। पहला अजर कौन सा था? ना मुरझाने वाला सेहरा। दूसरा अजर कौन सा था? शादमानी का सेहरा। तीसरा अजर जलाल का सेहरा, रासबाजी का सेहरा। तीसरा सेहरा रासबाजी का सेहरा, चौथा सेहरा जलाल का सेहरा, और पांचवा जिंदगी का ताज। जिंदगी का ताज। आए मेरे साथ देखें दानियल 12वां बाप। वहां पर क्या लिखा है? कि उस दिन बथेरे नूर की मानद चमकेंगे, हर एक की रोशनी मुख्तलिफ होगी, हर एक की रोशनी मुख्तलिफ होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस छोटे से सितारे पर और उस पर रोशनी का फर्क है ना जी। वैसे ही आसमान पर खुदावंत की हजूरी में जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, जब ईमानदार खा वो भम तमाके में, खा वो 50 साल 2000 साल पहले, मिट्टी में उनकी हड्डियां भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, सब कुछ खत्म हो गया। खुदा ऐसी कुदरत वाला है, वो उनको दोबारा जिंदा करेगा और हर एक के पास जलाली बदन होगा। बहुत दफा लोग कहते हैं कि उनका क्या हाल होगा जो बम धमाके में मर गए, उनका क्या हाल होगा जो समंदर में गए चले, उनका क्या हाल होगा जो तूफान में उड़ गए, उनका क्या हाल होगा जो किसी ईमानदार को जैसे इब्तदाई कलीसिया में तलवारों से टोकों से काट दिया गया था, उन ईमानदारों को क्या जिनका हमें पता नहीं कि कीमे वाली मशीन में उनको कुतर दिया गया। खुदावन जब आएगा वो एक एक जर्रा फिर नया वजूद हासिल करेगा। इतनी कुदरत वाला आपका, आपका और मेरा खुदा है। कभी भी इस शक में जिंदगी ना गुजारें। बहुत दफा जब जनाजे पर जाते हैं इसी बात की बात फिक्र होती है, इसे ढको, ये ना हो जाए, वो जाए। तू खाक है फिर खाक में मिल जाएगा, और खाक दोबारा वजूद में आएगी। उस पर कैसा भी हाल हो ईमानदारों का, कितने ईमानदार जो फौज में थे मर गए, बम धमाके में उनके चीथड़े उड़ गए, पेशावर में कितने लोगों के चीथड़े उड़े, कईयों के हिस्सों का जिक्र पता नहीं चला कि किसका ये हाथ है किसका ये सर है। क्या हमारा खुदा इस काबल नहीं कि जिसने जिंदगी और सब कुछ बनाया दोबारा फिर उस वजूद को वजूद में लाए। सो दानियल 12वां बाप इसी बात के बारे में हमें बताता है। कि दानियल 12वें बाप में ईमानदार जो खाक में हैं, कुछ तो जो गैर ईमानदार हैं वो जिल्लते अबदी के लिए, जिल्लते अबदी यानी कि रसवाई के लिए उठेंगे, और कुछ अबदी हयात के लिए उठेंगे। वो ईमानदार लोग हैं, और वो कहाँ किस तरह के होंगे, नूरे फलक की तरह चमकेंगे, सूरज की मानद उनकी रोशनी होगी। इसलिए आए हम खुदावंद के हजूर झुकें और उससे कहें कि खुदावंद हम सब की रहनुमाई कर, ताकि हम भी इस ज़मीन पर रहते हुए अपनी मसीही ज़िंदगी को पूरे तौर पर पूरे दिल से पूरी जान से गुजारने वाले बने, और गवाही में और वफादारी में और खिदमत में और आजमाइशों में और ज़ाबता हयात जो मसीही ज़िंदगी है उसमें वफादार रहें। हम दुआ करेंगे।